بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Recording has started. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. الحمد لله کافی چھٹیوں کے بعد آج اللہ کا شکر ہے بہت کہ ہم دوبارہ اپنی روٹین میں آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ریویو سیشن دوبارہ ریزیوم ہو رہا ہے. کافی چونکہ وقت گزر گیا اس لیے کافی سارا ہمارا جمع ہو گیا ہے لیسن جو ہم نے ریویو کرنا ہے. مگر اس لحاظ سے اگر آپ لوگوں کی اٹینڈنس دیکھی جائے تو اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگ ریویو سیشن میں نہیں آتے تو گھر میں خود سے پڑھنا کتاب کا کھولنا بڑا ہی مشکل ہے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا اتنے دنوں میں کتنی دفعہ کتاب کھولی. اگر آپ لوگ مجھے خود بتائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ریویو نہ ہو اور کہا جائے کہ ریویو نہیں ہے یا کلاس ہی نہیں ہے تو کتنی دفعہ آپ کو موقع ملا ہے رمضان میں یا اس کے بعد بھی ایک مہینہ گزر چکا ہے کہ آپ نے ریویژن کی ہو, سبق کو کھولا ہو, اس کو غور سے پڑھا ہو اور دیکھا ہو کہ اس میں کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنے کی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ریویو کرتے رہیں. ٹیسٹ تو انشاءاللہ جب آئے گا تو, لیکن ریویو بے حد ضروری ہے. اس میں بھی بعض لوگ پھر بغیر تیاری کے آ کے بیٹھتی ہیں تو ان سب کو میں کہوں گی کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر آپ کلاس سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہی بک کھول کے تھوڑا پڑھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سب یاد آ جائے گا. کوئی بہت پرانا سبق نہیں ہوتا جو ہم ریویو کر رہے ہوتے ہیں, ریسنٹلی کا ہی ہوتا ہے. تو مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بک ایک دفعہ کھولیں. مجھے پتہ چل جاتا ہے, میں آپ لوگوں کو کہتی نہیں ہوں لیکن مجھے پتہ چل جاتا ہے جب کوئی کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے بول رہا ہوتا ہے یا نوٹس میں سے رینڈملی کہیں سے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے یا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وہ تکے مار رہا ہوتا ہے. لیکن میں صرف آپ لوگوں کی عزت کی خاطر کہ آپ لوگ سب کے سامنے میں آپ کو کچھ نہ کہوں تو میں آپ کا نام نہیں لیتی, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا. سو کچھ لوگ ہیں جو کبھی بھی پڑھ کے نہیں آتے, کچھ لوگ ہیں جو اکثر پڑھ کے نہیں آتے, اور کچھ لوگ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جن کا ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ ان میں سے کون سے ہیں. مجھے بھی پتہ ہے اور میں نام نہیں لوں گی, ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیجئے کہ آپ ہمیشہ پڑھ کے آئیں اور صحیح جواب دیں. اور اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے نہیں پڑھا ہوا, خود اس کو کنفیس کریں. کیونکہ جو سننے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جس جس نے نہیں پڑھا ہوتا, ٹھیک ہے؟ تو ادھر ادھر کے بے تکے جواب دینے سے یا تکے مارنے سے بہتر ہے کہ انسان کہہ دے کہ میں نے نہیں پڑھا ہوا. تو یہاں پہ سوال جواب کا کمپٹیشن نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ہماری ریویژن ہو جائے. ریویو کا مطلب کیا ہے؟ ریویژن. ریویو کا مطلب ایگزام نہیں ہے, یہ آپ کا امتحان نہیں ہو رہا. اگر آپ نے کتاب ہی نہیں کھولی تو تکے مارنے سے کوئی ریویژن نہیں ہو جائے گی. تو اس لیے پھر بہتر ہے کہ آپ بتا دیں. اور میرے خیال میں خود ہی ہمیں شرم آ جائے گی کہ جب ہم ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, ہر دفعہ یہی کہیں گے کہ ہم نے نہیں کتاب کھولی, تو خود ہی پھر احساس ہوگا کہ نہیں اب تو مجھے کھول کے جانی ہے کتاب. تو مجھے صرف وہ لوگ جواب دیں گے آج کے ریویو سیشن میں جنہوں نے کچھ پڑھا ہے. جنہوں نے بالکل نہیں پڑھا وہ کائنڈلی پلیز شروع میں ہی بتا دیں کہ ہم نے نہیں پڑھا, تاکہ نہ کسی اور کا ٹائم ضائع ہو نہ آپ کا ضائع ہو, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی آج ہم حدیث نمبر 1169 سے کریں گے, غزوہ احد کا بیان. اگر کسی نے پڑھا بھی ہوگا اور اس کے نہیں آنسر آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ, کوئی پرابلم نہیں ہے پھر, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی. جی, میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کا سوال پوچھوں, جو ہی میں آپ کی لائن کھولوں گی, سلام دعا ہو چکی ہے, چونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہوتا ہے اور ہم کافی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم سلام دعا نہیں کریں گے. جب ہم نے سیشن شروع کیا تو سلام ہو گیا, بار بار لائن کھولنے کے اوپر بار بار سلام دعا پہ ہم ٹائم نہیں لگائیں گے. آپ فوری فوری جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ سے پوچھا جائے گا. جی تحسین, آپ بتائیں گی کہ یہ 1169 سے 1177 تک जो अहादीस हैं, इनका आप थीम बताएंगी कि इनका क्या थीम है, इनमें सब में क्या एक बात हो रही है जो कॉमन है?
इसमें पूरे में तो पहले हमें गज़वे अहद का बताया जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जाती कोई मतलब हमला या कोई बात या कोई बुरी चीज कहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उसका बदला नहीं लेते थे। और अगर एज अ रसूल कोई तकलीफ पहुंचाता है तो फिर उस पे आप जो है वो उनके लिए बेदुआ भी करते थे,
शाबाश,
पर
सही, बिल्कुल सही
माफ
है,
नहीं करते थे हमें ना।
सही है बिल्कुल। नाजनीन, आप बताएंगी कि 1169 से 1177 तक अगर एक लाइन में सिर्फ एक बात कही जाए तो इसमें क्या बात बताई जा रही है हमें?
सर मैं भी यही कह रही हूँ कि माफी का बताया गया है कि आप सरासर हम गजवात में जाते थे और बैटल्स होती थी।
मतलब एक लाइन में अगर आपको ये इसका टॉपिक देना हो तो आप क्या टॉपिक देंगी? 1169 से 1177 तक, वो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल दोनों ने आपने सही कहा है,
माफी और
लेकिन
दर्द उधर, माफी और दर्द उधर।
ठीक है, सही। बेसिकली इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, क्योंकि हदीस नंबर ये जो है 1172 में माफी और दरगुजर का तो नहीं आया ना इसमें, तो फिर आप क्या टॉपिक देंगे जो? अगर हम एक एक लाइन में, ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैरन, अगर हम एक लाइन में इसका टॉपिक एक कुछ चंद वर्ड्स में देना चाहें तो इन अहादीस का टॉपिक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आने वाली तकालीफ, कि चाहे वो गज़वाए उहद में आई, चाहे वो मक्की जिंदगी में आई, चाहे वो उसके बाद मदनी जिंदगी में आई, और उनके तो रिएक्शन डिफरेंट है ना, किसी में माफी है, किसी में कुछ और है, और वो डिपेंडिंग ऑन, जैसे अभी तैसी ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर जब आया तो फिर बदला लिया गया, जब आपकी ज़ात पे आया तो नहीं लिया गया, वो तो रिएक्शंस में आ गया। लेकिन अगर एक टॉपिक दिया जाए तो इन सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आने वाली जो तकालीफ है उनका जिक्र है, अगर हम इनको एक जगह पे एक टॉपिक के अंदर लाना चाहें, ताकि फिर हमें समझ आ जाएगी ना कि क्या यहाँ पे बात हो रही है। इन सारी अहादीस में एक चीज जो कॉमन है, ये दीन के रास्ते पे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आने वाली तकालीफ, ठीक है? तो अब उसके अंदर फिर हम डिफाइन करेंगे, अच्छा भाई उहद में ये हुआ, फिर उसमें ये हुआ, फिर मदनी जिंदगी में ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, ठीक है? तो इस तरह से आप इसका टॉपिक बना लें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा ये बात। अच्छा जी, शबनम खान आप बताएंगी, जी
जी
शबनम खान आप बताएंगी कि अल्लाह ताला का गजब किसके ऊपर बहुत सख्त होता है? शाबाश। और ठीक, शाबाश,
अब्दुल्ला बिन उबई की मतलब मिसाल दी गई थी, और
ठीक,
बाकी जो बदवा फरमाई थी आपने ने जिन्होंने बहुत तकलीफ पहुंचाई थी जब आप खाने काबा पर खाने काबा के करीब नमाज अदा कर रहे थे, तो वो जो अबू जहल ने अपने साथियों के साथ मिलकर
ठीक है,
वो जो
ओजड़ी का
उंगली
वाक्य
रखी
हुआ,
थी
ठीक
अब्दुल्ला
है,
बिन
जजाक अल्लाह खैर,
उबई।
शाबाश। देखें, उबई बिन खल्फ और अब्दुल्ला बिन उबई में फर्क है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि कॉमन सा है ना, उबई दोनों में आता है, तो ये ना हो कि अब्दुल्ला बिन उबई की आप कह दें अब उबई बिन खल्फ की जगह। तो क्योंकि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे किया था, जिस पे गजब नाजिल हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, कि जिसने दंदान मुबारक शहीद किए थे, तो उबई बिन खल्फ था वो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल किया था। तो जो जिस पे जिसको कोई नबी, कोई भी नबी कत्ल करे, उसके ऊपर अल्लाह ताला का बहुत शदीद गजब होता है, सबसे ज्यादा गजब उस पे होता है, कोई भी नबी, ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो यहाँ पे वाकया आया है, लेकिन कोई भी नबी जब किसी को कत्ल करता है तो अल्लाह ताला का उस पर बहुत गजब होता है, क्योंकि नबी यूं ही किसी को कत्ल नहीं कर देते, बल्कि उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई बात होती है कि वो यानी जो रहमत बन के आए होते हैं दुनिया के लिए, वो किसी के ऊपर हाथ उठा दें तो सोचें वो किस कदर बदबख्त इंसान होता है। अच्छा ठीक है जी, नेक्स्ट आप बताएंगी नसरीन के हदीस नंबर 1175 में ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए नहीं आए थे, तो फिर वो अबू लहब की बीवी ने इस तरह की नाज़ेबा बातें की, तो कि कैसे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए नहीं आए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए 3 रातों तक नहीं उठ सके?
इसलिए कि हजरत सलम जब पढ़ते थे कुरान ना, तो ये जो मुशरिकीन और ये मुनाफिकीन थे ये भी सुनते थे, तो
शाबाश, बिल्कुल सही है,
वो फिर वो जब नहीं आए तो उन्होंने नहीं सुना, तो उसने वो नाज़ेबा बात कही थी।
ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी फरजाना चौधरी, आप बताएंगी कि जब हमें पता चलता है कि गधा हराम है, तो फिर क्या उस पर सवारी करना जायज है, और क्या हदीस नंबर 1176 में ये कहा गया कि पालान बांधा गया था और नीचे एक मखमली चादर बिछाई गई थी, तो क्या ये इसीलिए थी क्योंकि वो गधा हराम है तो उसके वो टच ना हो?
आपकी बात ये थी कि एक तो ये कि गधे को तकलीफ नहीं हो उसके ऊपर, ताकि उसकी जब बदन पड़े तो उसको उसको चुभन खुद को भी नहीं हो और उसको
बैठने वाले को भी नहीं हो,
जानवर
सही।
जी। और दूसरी बात ये थी कि जो चीजें हराम है वो जरूरी नहीं नापाक हो, क्योंकि उसका जो गोश्त खाना वो हराम था,
सही
ये वैसे उसको नापाक वो नहीं है, नजफ नहीं है वो।
सही, बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। जी नफीसा, आप बताएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों के लिए बद्दुआ की थी, अपना वो पेल टॉक आवाज म्यूट कर लीजिए, बद्दुआ की थी मुशरिकों के लिए, उन्होंने ओझड़ी रखी थी मक्की दौर में, ये बात है, ये बद्दुआ फिर कबूल कब हुई? शाबाश, बिल्कुल सही, शाबाश, यानी इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई, लेकिन आपने देखा कि उसको भी कबूल होने में टाइम लगा, ये नहीं हुआ हम जब किसी के ऊपर सोचते हैं कोई दुआ करने के लिए, बद्दुआ तो करनी नहीं चाहिए आम हालात में, लेकिन हम जब किसी के ऊपर कोई दुआ भी कोई देते हैं या कोई दुआ अपनी मांगते हैं, तो हम चाहते हैं फौरी तौर पे कबूल हो जाए, जबकि हम यहाँ पे देखते हैं कि एक नबी की दुआ है, लेकिन फौरी तौर पे उनके ऊपर कोई जलजला नहीं आ गया, उनके ऊपर कोई पत्थरों की बारिश नहीं हो गई, अब वो लोट पोट हो रहे हैं, हंसी के मारे उनके बुरे हाल हो रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के बावजूद इतना टाइम गुजरा कि देखें आपने हिजरत की, उसके बाद 2 साल के बाद दो हिजरी में जंगे बदर हुई, तो कितना टाइम गुजरा ना, कितने सारे दिन गुजरे, कितने सारे घंटे गुजरे, तो ऐसा नहीं कि इंसान दुआ करके फौरन उसका नतीजा चाहे, बल्कि दुआ करने के बाद इंसान को सब्र करना चाहिए, और ये फौरी तौर पे नहीं कह देना चाहिए कि मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं होती, नहीं, हम नहीं जानते कि वो दुआ की कबूलियत का कौन सा वक्त है जो अल्लाह ताला के हाँ है लिखा हुआ और उस वक्त ही वो कबूल होगी। दूसरी आप देखते हैं ना, जब हम ये कहते हैं ये हदीस नंबर 1172 में जो है, हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर मक्का में जो दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है, तो ये सिर्फ हमारा ही एक जहन नहीं है, बल्कि ये उस ज़माने में भी सहाबा कराम की भी यही सोच थी कि इस शहर मक्का में जो दुआ कबूल की जाए वो कबूल होती, जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। आज भी जो लोग वहाँ जाएँ हज या उम्रा के लिए, इस बात को जहन में लेकर जाएँ कि उधर हर दुआ कबूल होती है, इंसान जो दुआ की कबूलियत की शरायत है उनको सामने रखते हुए, और जो दुआ कबूल ना होने की वजूहात हदीस में बताई गई हैं उनसे बचते हुए कोई दुआ करेगा तो ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको एक जहन आपका ये होना चाहिए, तो ये ऐसी सुनी सुनाई कही कही बातें नहीं है कि कुछ सुनी सुनाई बातें आ रही हैं, शायद लोग ऐसे ही कह देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये वाकई ट्रू है। ठीक है। अच्छा जी, और किसकी बारी थी जी? आसिर, आप बताएंगी कि ताइफ के पत्थर खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से क्या रहमत हुई थी?
अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो उनके हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि इन लोगों में से कोई ऐसा आए जो ईमान और इस्लाम पे चले, तो अल्लाह ताला ने फिर उन लोगों को हिदायत के रास्ते पे चलाया था।
नहीं, फौरी तौर पे उस वक्त क्या अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग?
फरिश्ते दो नाजिल हुए थे,
जी
जिब्राइल इस्लाम और पहाड़ों के फरिश्ते नाजिल हुए।
सही, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और पहाड़ का फरिश्ता नाजिल हुआ, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि उनकी औलाद अल्लाह ताला इसमें से कोई ऐसा पैदा करे जो तौहीद पर हो, शिर्क ना करे, तो वाकई क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हुई फिर?
बाद में इस्लाम कबूल किया था।
सही, शाबाश, यानी उन लोगों ने बाद में फिर इस्लाम कबूल कर लिया। पर आपको पता है ना कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे, जिन्होंने सिंध फतह किया था, तो वो भी फिर इन्हीं की औलाद में से थे। तो देखें कि कहाँ तक नस्लों के अंदर ये चीज़ फिर जाती है। जी अम्बीन मंसूर, आप बताएं कि अबू जहल को कत्ल करने वाले जो लड़के थे वो कौन थे, और अबू जहल ने क्या कलेमात कहे थे मरते वक्त तकब्बुर के?
हाँ जी, वो दो लड़के थे, माउस और उनके जो अबू जहल को कत्ल करते वक्त उसने कहा था कि मेरी दो दो इसमें बातें उन्होंने बताई थी कि एक तो ये कहा था कि तुम्हारी मेरे से बड़ा कोई और आदमी है जिसको तुम्हारे कौम ने कत्ल किया हो, और ये भी कहा था कि मेरी गर्दन को नीचे से काटना, ताकि क्योंकि तकबर की निशानी थी कि वो बड़ा है बहुत अपनी कौम का, कि अगर नीचे से काटेगा तो उसकी गर्दन लंबी होगी।
शाबाश, सही। तो ये दो कलिमात तकब्बुर के मरते वक्त भी, यानी एक इंसान जब अपने सामने देख रहा है कि मुझे मौत आ रही है, तब भी उसके अंदर से तकब्बुर ना जाए, इससे बड़ी क्या यानी किबर की बात हो सकती है? और इससे हमें पता चलता है कि वो कैसा था, कि यानी हम कहते हैं ना फिरौन को कि वो बड़ा मुतकब्बिर था, लेकिन ये कैसा इंसान था कि जो फिरौन से भी बढ़ के था, क्योंकि इस फिरौन तो मरते वक्त फिर भी बोल उठा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लेकर आया, मगर ये मलून ऐसा था कि मरते वक्त भी उसने ये कहा कि मेरी गर्दन को ऐसे करके काटना, और इतने बड़े आदमी को तुम कत्ल कर रहे हो, यानी उसका तकबर तब भी खत्म नहीं हुआ। इससे बड़ी आप क्या बात मिसाल तकबर की और सोच सकते हैं? जी शाहदी जी, आप बताइए, काब बिन अशरफ के कत्ल की इजाजत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दी थी?
कि वो नबी करीम की शान में कुछ ताखी करता था और शेर कहता था और उसको बहुत तंग किया
तो वो फिर उसको कत्ल किसने किया था?
उसको मोहम्मद बिन अबू मुस्लिमा और उसने अबू नाइला ने।
शाबाश, और ये बताइए कि इससे आपको क्या समझ आई, क्या मसला इस हदीस से निकलता है?
इस हदीस से ये मसला निकलता है कि जो जो यानी जो इस्लाम यानी उसको कि जो इस्लाम पे नहीं चलता तो उसको कत्ल करना चाहिए, उसके कत्ल की जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल की इजाजत दी थी। वैसे हम खुद सजाएं नहीं दे सकते, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी उसका फरमाना उसके लिए ये दर्जा रखता था कि उसे कत्ल किया जाए।
जो इस्लाम पे ना चलता उसको कत्ल कर दिया जाए।
जो तकलीफ पहुंचाते हो और जो इस्लामी कानून पे ना चल।
ये तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि बड़ा कत्लोगारत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो
जो
इस्लाम,
तकलीफ देता हो और
जी,
नहीं आता।
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा शाहती, बहुत सही आपने जवाब दिए, लेकिन इसकी तस्हीह कर लें कि जो गुस्ताखी रसूल करे, जैसे आज के वक्त में हमारे मुल्क में भी कानून है कि गुस्ताखी रसूल को सजा क्या दी जाए, कत्ल उसकी सजा। बिल्कुल जेन्युइन है ये, इस हदीस से हमें साबित होता है कि गुस्ताखे रसूल की सजा यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। मगर लेकिन एक चीज जो बहुत अहम पॉइंट है इसमें, जो याद रखना चाहिए, वो ये कि आज इस कानून को जो लोग हाथ में लेकर और खुद से एक मॉब सा बन जाते हैं और वो मिलके जाके उस बंदे को खत्म कर देते हैं और सोचते हैं फलां इमाम ने कह दिया मस्जिद के जी फलां दोस्त आखिर रसूल है, बस इसको नहीं छोड़ना और ऐसे करना है। तो लोग सारे जमा हो जाते हैं, उसके घर को आग लगाते होते हैं, उनको आग लगा देते हैं, उनको जला देते हैं, कभी कुछ करते हैं कि गुस्त आखिर रसूल का, और किसी ने ना कानों से सुना होता है, ना कोई गवाही होती है, ना कुछ, बस किसी ने कह दिया, बस कह दिया, उसका कह दिया, ना कोई पूछा, ना ये देखा कि ये झूठा है कि सच्चा है, कुछ भी नहीं। तो आज के वक्त में वो भी ना कोई उलमा होते हैं ना कुछ, बस मस्जिदों के वो कोई इमाम है या कोई कुछ है, उसने भी इधर से बात सुनी उधर से बात सुनी, जैसे आपको पता है रिमोट एरियाज में कुछ खास ऐसे स्कॉलर्स तो होते नहीं है जो मस्जिदों के इमाम होते हैं, लेकिन उनके हाथ में माइक होता है और वो लोगों को कह देते हैं, उनको इतना जोश दिलाते हैं कि इसने नबी की शान में गुस्ताखी की तो तुम कैसे बेगैरों तो को ये बात तुम बर्दाश्त कर लो। और फिर आगे कई ऐसे लोग भी जो कि मजलूम होते हैं वो भी इसमें इसका शिकार हो जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, यानी इम्प्लीमेंटेशन सही करनी चाहिए, कानून में कोई गलती नहीं है। आप इसके ऊपर देखते हैं बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं आपके मीडिया में भी कि क्या ये सही है या नहीं सही। इस हदीस के मुताबिक सजा तो बिल्कुल सही है मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रही। जब हर कोई कानून को हाथ में ले लेगा और एक बंदा माइक पे कुछ बोल देगा और फिर उसके कहने के ऊपर लोगों को इतने मुश्तहिल हो जाते हैं कि वो क्या क्या खुद ही कार्रवाइयां करने लगते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहां पे भी होगा, चाहे कत्ल की सजा हो, चाहे कोई भी किसी किस्म की भी और क्राइम है उसकी सजा है, कहीं पे भी इजाजत नहीं है लोगों को कि वो खुद से खुद सजाएं देने लगे, वरना तो जंगल बन जाएगा। ये कोई जंगल के कानून नहीं है, ये एक पूरी शरीयत के तहत चलने वाले, एक अदालतों के तहत चलने वाले ये कानून होते हैं। यहाँ पे आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जज की भी हैसियत रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना और इजाजत देना मोहम्मद बिन मुस्लिमा को, ये ऐसे ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जज हैं और आपने इस चीज का फैसला दिया है कि हाँ ये चीज कार्रवाई आप कर सकते हैं, तब कार्रवाई की गई है। ऐसे ही नहीं यूं ही मुंह उठा के कोई भी उठ के चलना शुरू हो जाए और करना शुरू हो जाए, ये नहीं है। वरना इससे पहले काब बिन अशरफ भी उसी माशरे में मौजूद था, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि कोई उठता और जाके ये कार्रवाई कर लेता खुद से। लेकिन आप हदीस में देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काब बिन अशरफ का काम कौन तमाम करके आएगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सजा सुना दी थी कि इसकी सजा अब कत्ल है। उस पे मोहम्मद बिन मुसल्लमा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं ये काम करूंगा आप, लेकिन मुझे आप ये इजाजत दें तो मैं ये करूंगा। ये नहीं कि उन्होंने खुद ही ऑफर किया और मैं जा रहा हूँ कत्ल करने के लिए, या कोई छुप के जाके कर लेता और फिर आके पता चलता, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फैसला सुनाया उसके बाद सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन की बात थी कि अब कौन करेगा। ठीक है, तो इस हदीस को पूरे कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, फिर ये नहीं कि हदीस को भी तरोड़ मरोड़ के देखा ना, वो भी ऐसे गए थे, उन्होंने भी असैसिनेट कर दिया था, तो अब भी आज कोई भी उठ के जाके किसी को भी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से फिर हमारे जो ये कवानीन है इनको भी लोग इस पे उंगलियां उठाते हैं, कवानीन को भी लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं जब सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो ये हमें जो हदीस के स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी तरह ये समझ होनी चाहिए, कानून सही है या नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही हो रही है या नहीं हो रही। तो क्या चीज़ हमें इस पूरे उसमें समझ आई कि कानून बिल्कुल सही है और इस हदीस से साबित होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट वो भी आपको समझ आ गया होगा। आप तो बहुत कम लोग आए हैं आज इसमें जी, रास्ता कालिया आप बताएंगी कि माले फे और माले गनीमत में क्या फर्क है?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
माली गनीमत
वालेकुम।
वो होता है कि जिसमें जंग हो और कत्ल वारत हो और उसमें मुकाबले के बाद जो माल नष्ट मिले वो माल गनीमत है, और वो दूसरा माल जो माले फे है जिसमें जंग के बगैर ही मिल जाए ना।
सही सही, ठीक है ठीक है, शाबाश जी। इशरत आप बताएंगी कि यहाँ पे हम जब गज़वा खैबर को देखते हैं तो हमें सुबह सादिक और सुबह कादिब का पता चलता है कि क्या है, ये क्या फर्क है दोनों में? थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे?
जी रात का अभी असी आई आसमान से नहीं गई हो अंधेरे की, वो सुबह
हाँ
आदत
सही है,
होती है।
सही सही। अच्छा ये आपने नहीं रिव्यू किया हुआ चैप्टर, तो चलिए इंशाल्लाह पिछले वाले में से देख लेते हैं कि मदनी दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचती रही हैं, किसकी तरफ से सबसे ज्यादा तकलीफें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची हैं?
अबू जहल, अबू लहब, ये जो आपके करीब चचा भी थे, रिश्तेदार थे, यही लोग ज्यादा सब में ज्यादा आपकी खिदमत
मदनी दौर में,
कर रहे हैं
ये मदनी दौर में थे।
मदनी दौर में। अच्छा, ये तीन जो थे यहूद के जो थे उस्ताद, वो लोग थे
और
यहूद के तीन जो गुरु थे, वो लोग ज्यादा तकलीफ दे रहे थे मदनी।
सबसे ज्यादा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची, देखें एक दुश्मन सामने होता है उसका तो पता होता है कि ये सामने, सबसे ज्यादा जो आपको तकलीफें और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है वो मुनाफिकीन की तरफ से की गई है, वो यहूद की तरफ से नहीं। यहूद तो ठीक है वो एक दुश्मन है, एक देखें आस्तीन का सांप होता है और एक सामने का दुश्मन होता है, जो आस्तीन का सांप होता है ना जो दो के रूप में दुश्मन बन के आया होता है, उससे ज्यादा इंसान को
अस्सलाम
नुकसान भी पहुंचता है और उससे ज्यादा तकलीफ होती है इंसान को, हर्ट होता है वो, क्योंकि वो अपने के रूप में और दुश्मनी कर रहा होता है। सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तकलीफ पहुंचाने वाले मुनाफिकीन थे, ठीक है। अच्छा और आप लोगों से थोड़े सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप में से जो शुरू का था जी तहसीन, आप ही बताएंगी कि अब्दुल्ला बिन उबई की शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर साद बिन उबादा से की थी, क्यों साद बिन उबादा से की थी और क्या ये गइबत नहीं हो गई?
उबादा जो थे वो अब्दुल्ला सॉरी आपसे तस्लिम साद बिन उबादा के घर इयादत के लिए आए हुए थे। ये गिबत नहीं थी क्योंकि ये उसकी ऐसी खसूसियत थी जो वो आमतौर पे सभी के साथ किया करता था। ऐसा नहीं था कि कोई छुपी हुई चीज थी जो आपसे तस्लिम आगे बता रहे हैं, बल्कि वो इस तरह का मामला हर एक के साथ करता था। इसीलिए आपसे तस्लिम ने जब बात की तो साद बिन उबादा ने फरमाया कि आप मतलब इसे दरगुजर कर दें।
सही नाज़नीन, आप बताएंगे इसी सवाल का जवाब? जी
जी
नाज़नीन
उस्ताद, जी, मैं हूँ
जी,
जी उस्ताद। उन्होंने इसलिए आपने कहा कि गीबत नहीं है, ये आंसर तो दे दिया ना। दूसरा ये है कि वो साद बिन उबादा जो थे वो इसके लीडर थे ना, इसी के कबीले के, जो अब्दुल्ला बिन उबे जिस कबीले का
शाबाश,
था,
खजरज के, बिल्कुल शाबाश,
इसलिए
खजरज के सरदार थे साद
खजरज
बिन उबादा। तो अब ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ये बात कही तो क्यों ये गइबत नहीं है?
खुलेआम था, जाहिर था, सबको पता था ये कैसे नेचर का है। और साद बिन उबादा खुद भी जानते थे कि ये क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों जेलस हो रहा है आप सरासरम से। तो इसलिए फिर आप सरासरम ने जब कहा तो वो गीबत नहीं है क्योंकि उसका नोन नेचर था। ऐसे नहीं है कि कोई छुपी हुई
सही
जो नेचर है उसको जाहिर कर रहे हैं, वो गीबत हो
सही।
जाती है।
और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में मजलूम थे कि उनके साथ किसी ने ऐसा सलूक किया था, ये जुल्म का बयान कर देना था कि ये जुल्म मेरे साथ किया गया है और वो सरेआम हो रहा था, ये भी नहीं कि कोई छुपके हुआ हो, ये सरेआम हो रहा था कि उसने इस किस्म की तकलीफ दी थी, तो ऐसा वाकया बयान कर देना कि जो इंसान के साथ किसी ने ऐसी तकलीफ दी हो और ऐसा मामला किया हो जो सबको मालूम भी हो एक बंदे का, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता, मगर ये है कि हर जगह हर वक्त बैठ के इस तरह की दास्तानें करते रहना वो दुरुस्त नहीं होता, ठीक है।
तो सर ये नहीं है कि इस्लाम में कि आपकी जो प्रॉब्लम जो सॉल्व कर सके उसको जाके आप बता सकते हैं ना।
जी बिल्कुल, छठा पारा शुरू होता है ना इसी चीज से, वो जो ला युहिब्बुल्लाह है उसमें यही बात की गई कि जब किसी के ऊपर जुल्म किया जाता है तो वो अपनी बात को जाके उसको पहुंचा सकता है। ये यहाँ पे एक शिकायत के तौर पे तो नहीं थी, क्योंकि वो भी एक इस चीज का तो नहीं कुछ ज्यादा कुछ कर सकता था, मगर ये एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपना जो दुख हुआ था, एक रंज हुआ था उसको शेयर किया था।
थे पर ताज उसको पहनाया जा रहा था, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई कि
नहीं, वो लीडर की वजह से नहीं पहनाया जा रहा था कि वो प्रोमिनेंट बड़े लीडर हैं। जो अब्दुल्ला बिन उबई था वो भी बड़ों में से ही था, उनके बड़ों में से था। और आपको पता है कि पहले की जंग के अंदर इनके सारे बड़े बड़े दुनिया से जा चुके थे, और ये उनके बड़ों में था। और ये भी कोई छोटा आदमी नहीं था, ये भी उनके यानी सरदारों की फहरिस्त में आता था। मगर
सरदार
जाहिर है
एंड
टॉप लीडर साद बिन उबादा थे।
सरदार एंड एज वाइज भी बड़ा आप ये कह
हाँ,
रही है ना।
एज वाइज भी बड़ा था, बिल्कुल। अच्छा फरजाना चौधरी, आप बताएंगे सुबह सादिक और सुबह काजिब का फर्क, ताकि सबको ही मालूम हो जाए। मेरे ख्याल आपकी लाइन म्यूट है। अजी अब बोल के देखें। जी
सादिक वो होती है जो कि सादिक से पहले निकलती है, उसमें नीचे से रोशनी एक आसमान की तरफ निकलती है और वो फैलती है, और उसके बाद जब फैलती है जब सफेदी ही आती है तो फिर वो सादिक कहलाती है।
तो पहले आपने क्या कहा?
जो कादिक कादिक सादिक से पहले जो होती है वो नीचे से जमीन से मशरक की तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ एक
सही
रोशनी निकलती है,
सही, बिल्कुल सही
और वो जब सफेदी में बदल जाती है
सही।
फिर वो, और इसमें ये भी पता था ना कि दो अजाने जो होती थी वो इसी बेस पे करती थी ना, तो पहली अजान और वो दूसरी अजान का जो फर्क भी था।
सही सही, बिल्कुल, शाबाश। तो अच्छा, फजर कब होगी? सुबह काजिब पे होगी या सादिक पे? शाबाश। यानी सुबह कादिब है ना, वो उसको कहते हैं कि जिस वक्त एक जस्ट एक रेज ऑफ लाइट ऊपर को उठती है, वो कादिब है। अभी फजर नहीं हुई होती। सुबह सादिक वो है जिस वक्त वो रोशनी फैलने लगती है, सफेदी होने लगती है। एक वो फटती है, उसके बाद एक सफेदी जब फैलने लगती है, तो वो है सुबह सादिक। उसके ऊपर फिर फजर होती है, ठीक है। व्हेन इट्स डार्क काजिब, नहीं ये नहीं सिर्फ कह सकते काजिब है व्हेन इट्स डार्क, क्योंकि जब रेस भी एक ऊपर को जाती है तब भी वो काजिब ही है। सुबह काजिब, सुबह तो है ना, अगर बिल्कुल ही रात है तो फिर वो तो, लेकिन अंधेरा ही रहता है उस वक्त भी, ठीक है। अच्छा हमें यहाँ पे एक और बात पता चली है। अब ज्यादा लोग नहीं है, कोई और आया है तो मैं फिर पूछ लेती हूँ, किसी और ने ज्वाइन किया अगर तो। नहीं, उतने ही लोग हैं। चलें यहीं पे आप फिर जवाब दे दें, सभी लोग पेल टॉप पे ही जवाब दे दीजिए। अगर लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो मैं किससे रिव्यू करूंगी, खुद ही तो नहीं कर सकती ना। जी शहनाज आप हैं यहाँ पे? अच्छा, मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा था। ओह अच्छा, आपका नाम आ गया। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। हाँ जी, आप थी पहले से, सॉरी मैंने आपका नाम मिस कर दिया। आप ये बताएंगी कि औरा मुखफ़फ़ा क्या है? जी जी
लेकिन मुखफ्फा में ये दूसरे जैसे रान का हिस्सा और ये भी आ जाता है,
जी
राइट? अगर ये जाहिर हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
तो इसको जाहिर करना तो क्या लड़के वगैरह
नहीं,
ऐसी
जाहिर नहीं कर सकते लेकिन मजबूरी के तहत अगर जाहिर हो
जी,
जाए तो।
बिल्कुल, शाबाश, सही, बिल्कुल, जज़ाकअल्लाह खैरन। जी ये देखें, ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आदमियों के लिए मिसाल के तौर पे ऐसी गेम्स हैं जिनमें वो बिल्कुल अंडरवेयर्स पहन के वो गेम्स खेलते हैं, या मॉडलिंग होती है तो बहुत ही छोटी शॉर्ट्स या अंडरवेयर्स के साथ वो मॉडलिंग करते हैं, या और कई चीज स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा होता है। तो हमारे दीन में औरा मुखफ्फा ये कहते हैं, ये रान के, रान मतलब है ये अपर थाई है, जो घुटने से ऊपर की ये जगह, ये कोई जरूरत है ऐसी, मिसाल के तौर पे कहीं, अब जैसे यहाँ पे हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा उठा के जाहिर है बैठना था सवारी पर, तो उसके लिए जरूरत के तहत उठाया, तो इतने हद तक तो सही है। लेकिन इस चीज को एक आदत बना लेना, या ऐसी चीजों को एक तरफ से बेपरवाह हो जाना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सही नहीं है। ये भी औरा में से है, यानी छुपाने की जगहों में से है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक मर्द भी ये पार्ट्स यूं ही तौर पे बगैर किसी वजह के इनको जाहिर नहीं कर सकता। सही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएंगे आप लोग यहाँ पे बैंटॉक पे बताएंगे कि खैबर में क्या जंग हुई थी या सुलह से ही फतह हो गई थी? ठीक है, सही, जंग हुई थी, मगर बहुत ऐसी जंग नहीं हुई थी कि जैसे हम कहें कि बदर की हुई है या उहद की हुई है, या आजाब में तो नहीं हुई, लेकिन जैसे बदर और उहद में हुई थी वैसी जंग नहीं, मतलब छोटी जंगें एक एक किले के सामने हुई। तो चूंकि आप लोगों ने सीरत पढ़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफ़ी हद तक आपको उससे फ़ायदा हुआ होगा और ये समझने में भी आसानी हुई होगी। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे आमिर बिन अकवा जो थे उन्होंने शायरी की है,
जी, अस्सलाम
क्या
वालेकुम
इस तरह से शायरी
रहमतुल्लाहि व
करना, नात खानी
बरकातुहू।
के मुकाबले मुनक्किद
उम्मीद है कि
करना,
आप सब लोगों तक
मिलाद
मेरी
वगैरह
आवाज़
करना,
जो है
ये
वो
क्या
पहुंच रही
दुरुस्त फिर
होगी।
हो जाता है इससे? क्योंकि उन्होंने भी तो शायरी की थी ना, नात खानी इज नॉट दुरुस्त। जी अच्छा ये बात, ये दो हमारे बिल्कुल ही एक्सट्रीम्स हो जाते हैं। एक तो बिल्कुल ही कि भाई नात खानी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, एक कहते हैं नात खानी हर चीज़ है, उसके लिए वो बड़े बड़े मुकाबले भी रखते हैं, बच्चों को भी प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, और जैसे कुरान के कंपटीशन होने चाहिए उस तरह से नात खानी के कंपटीशन होने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ की कोई ऐसी फजीलत या ऐसी नहीं है। कभी किसी ने नात कह दी तो हज़रत अहसान भी नात कहा करते थे, ऐसे अशआर कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, मतलब तारीफिया कलिमात, तारीफिया अशआर कहा करते थे जो नात की एक शक्ल हो गए। मगर इसको कोई ऐसा नहीं था कि कोई मजलिस से सजी नहीं है,
जी, मेरी
मुकाबले हो
आवाज़
रहे
आप लोगों
नात
तक
के,
जो है
कितने
वो पहुंच रही
मुकाबले हुए
होगी इंशा
सहाबा के
अल्लाह
दरमियान
ताला।
नात
सलाम
खानी
अलैकुम
के।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी जस्ट शायरी इस तरह से कर सकते हैं कि जस्ट जैसे कोई शायरी करता है, अब उसके
जी, हम
अंदर
शुरू
उस
करते हैं
चीज़ को
क्लास
इतना
को।
बड़ा बना लेना, इतनी बिग डील बना लेना, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है चले सही है, इंशा अल्लाह ताला क्लास शुरू हो गई है। देखिए सुभान अल्लाह हुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।